फैक्ट्री के ऑफिस में हवा पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थी। विश्वनाथ अपने केबिन में खड़ा था, चेहरा शांत, लेकिन अंदर क्या चल रहा था ये उसकी आंखें बता रही थीं। आर्यन को अंदर भेजो, उसने इंटरकॉम पर कहा। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुला, आर्यन अंदर आया, सीधा, बिना झिझक, नजरें झुकी नहीं थीं। विश्वनाथ ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर धीमे से बोला, क्या हुआ था नीचे, पूरा बताओ। आर्यन ने बिना घुमाए फिराए सब बता दिया। वो आदमी काम छोड़कर फोन पर था, मैंने टोका तो उसने उल्टा मुझे ही चैलेंज किया यूनियन का नाम लेकर, और मैंने थप्पड़ मार दिया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। विश्वनाथ ने गहरी सांस ली, उसकी नजरें अब भी आर्यन पर थीं। तुम्हें पता है इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं? उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें सिर्फ डांट नहीं थी, एक चेतावनी भी थी। आर्यन ने सीधा जवाब दिया, पता है, लेकिन गलत को गलत ही कहूंगा और सहूंगा नहीं। विश्वनाथ की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, जैसे उसे जवाब पसंद आया हो, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। ठीक है, उसने धीमे से कहा, अब इसे संभालना भी पड़ेगा। फिर उसने इंटरकॉम उठाया, यूनियन लीडर को अंदर भेजो। कुछ मिनट बाद वही आदमी केबिन में आया, चेहरे पर गुस्सा साफ था और आंखों में सीधी चुनौती। वो बिना पूछे कुर्सी पर बैठ गया, जैसे दिखाना चाहता हो कि वो झुकेगा नहीं। विश्वनाथ ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस अपनी जगह पर खड़ा रहा। फिर शांत आवाज में बोला, मामला बढ़ाने से किसी का फायदा नहीं है, काम रुका हुआ है, लॉस सबका होगा। उसने हल्का सा इशारा आर्यन की तरफ किया, आर्यन अपनी गलती मान रहा है, हम इसे यहीं खत्म कर देते हैं। एक पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड यूनियन लीडर हंस पड़ा। ऐसे कैसे खत्म कर दें? उसकी आवाज में तंज था। गलती मान रहा है? उसने सीधा आर्यन की तरफ देखा, ये तो अभी भी अकड़ में खड़ा है। फिर विश्वनाथ की तरफ झुककर बोला, सीधी बात है, या तो इसे बाहर निकालो वरना कोई काम पर वापस नहीं आएगा। उसकी आवाज अब खुली धमकी थी। आर्यन का जबड़ा कस गया, लेकिन वो चुप रहा। विश्वनाथ की आंखों में धीरे धीरे गुस्सा उतरने लगा। तुम मुझे शर्तें दे रहे हो? उसने बहुत धीरे से पूछा। यूनियन लीडर ने कंधे उचकाए, जो सच है वही बोल रहा हूं। बस अगले ही पल चटाक, इस बार आवाज और भी भारी थी। विश्वनाथ का हाथ उठा और सीधा उसके चेहरे पर पड़ा। कुर्सी पीछे खिसक गई, आदमी एक पल के लिए संभल नहीं पाया। कमरे में जैसे वक्त रुक गया। विश्वनाथ आगे बढ़ा, उसकी आंखों में अब सीधी आग थी। गलती तुम्हारी थी, उसने दांत भींचते हुए कहा। काम छोड़कर बैठा था, ऊपर से मेरे बेटे को सिखा रहा था, हक क्या होता है? उसने सीधा उसकी कॉलर पकड़ ली, ये मेरा बेटा है और इस फैक्ट्री में जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा। हर शब्द सीधा और भारी। यूनियन लीडर ने खुद को छुड़ाया, उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, एक ठंडी जिद थी। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, ठीक है, बहुत अच्छा। उसने कुर्सी सीधी की और दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर मुड़कर बोला, अब देखिए आप किससे काम करवाते हैं। उसकी आवाज में साफ चुनौती थी। जब तक आपका बेटा मेरे सामने आकर नाक नहीं रगड़ेगा, तब तक हम में से कोई भी काम पर वापस नहीं आएगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया, आर्यन की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। यूनियन लीडर ने आखिरी बार दोनों को देखा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। ठक, दरवाजा बंद, और उसके साथ एक बड़ा टकराव शुरू हो चुका था। केबिन के अंदर विश्वनाथ और आर्यन खड़े थे, दोनों चुप। लेकिन इस खामोशी में आने वाले तूफान की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जहां अब फैसला आसान नहीं था। ऑफिस के केबिन में दरवाजा बंद था और अंदर हवा जैसे भारी होकर रुक गई थी। विश्वनाथ खिड़की के पास खड़ा था, हाथ पीछे बंधे हुए, चेहरा सख्त और आंखों में उबलता हुआ गुस्सा। आर्यन एक तरफ खड़ा था, चुप, लेकिन उसके अंदर भी हलचल कम नहीं थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला, शामली अंदर आई। उसकी चाल तेज नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे सब पता है। उसने एक नजर दोनों पर डाली, फिर दरवाजा बंद करके सीधा विश्वनाथ की तरफ बही। मुझे सब पता चला, उसने बिना घुमाए कहा। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। शामली आगे बढ़ी। अगर ये कंसाइनमेंट टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द सोच समझ कर। डबल पेमेंट करनी पड़ेगी, क्लाइंट हाथ से निकल सकता है और नाम खराब होगा वो अलग। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। विश्वनाथ ने धीरे से नजरें हटा ली, जैसे वो ये सब जानता हो, लेकिन इस वक्त सुनना नहीं चाहता। शामली ने फिर कहा, हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए, बस यहीं पर। विश्वनाथ का सब्र टूट गया। वो झटके से उसकी तरफ मुड़ा। क्या बात करनी चाहिए? उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें दबा हुआ गुस्सा साफ था। उसने मेरे बेटे को कहा है नाक रगड़ने को, और तुम कह रही हो बात करो? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा, समझती हो तुम? उसकी आंखें अब सीधी शामली पर टिकी थीं। आर्यन ने हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे वो इस टकराव को और बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन शामली पीछे नहीं हटी। उसने बहुत शांति से कहा, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, और ना ही ये कि आर्यन माफी मांगे, उसने साफ शब्दों में कहा। विश्वनाथ थोड़ा ठिठका, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। तो फिर, उसने तीखे लहजे में पूछा। शामली ने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज और भी स्थिर हो गई। मैं बस ये कह रही हूं कि अभी हमें गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। आप जो सोच रहे हैं मैं वो नहीं कह रही करने को, लेकिन अगर हम अभी नहीं संभले तो नुकसान सिर्फ उनका नहीं होगा, हमारा भी होगा। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई। विश्वनाथ ने नजरें हटा ली। उसके हाथ अब भी बंधे हुए थे, लेकिन उंगलियां हल्के हल्के कस रही थीं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। गुस्सा, जिद और जिम्मेदारी तीनों आपस में टकरा रहे थे। आर्यन ने एक नजर शामली पर डाली, जैसे वो समझ रहा हो कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन विश्वनाथ, वो अभी उस जगह पर नहीं था जहां वो ये सब शांत होकर सोच सके। उसने धीरे से सिर झटका, जैसे खुद से लड़ रहा हो। मुझे सोचने दो, बस इतना कहा उसने। उसकी आवाज अब भी भारी थी, लेकिन पहले जैसी तेज नहीं। शामली ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिला दिया। वो जानती थी अभी कुछ भी कहना आग में घी डालने जैसा होगा। कमरे में तीन लोग खड़े थे, लेकिन तीनों अपने अपने विचारों में उलझे हुए। बाहर फैक्ट्री बंद थी, काम रुका हुआ था, और अंदर एक फैसला जो जितना देर से होगा उतना भारी पड़ेगा, जहां गुस्सा और समझदारी आमने सामने खड़े थे।